हमारे स्वर्गीय पिता, आपके द्वारा हमारे लिए कहा गया एक शब्द ही अनेकों लोगों द्वारा किसी भी समय किए गए किसी कार्य या कहे गए शब्दों से अधिक महत्व रखता है, क्योंकि लोग यहाँ आपको देखने की प्रतीक्षा में हैं। और हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहाँ ऐसे आशावान लोग हैं जो आपकी ओर से कुछ न कुछ घटित होने की इंतजारी में हैं। और जब गहराई गहराई को पुकार रही है और लोग यहाँ कुछ घटित होते देखने के प्यासे हैं, तो उस पुकार का उत्तर देने के लिए कोई अथाह जरूर उपस्थित है। और यही कारण है कि हम आज रात यहाँ जमा हैं, क्योंकि ऐसी ही भावनाएं व बोझ इन सेवकों व लोगों के हृदयों में भी हैं। सभी ने ये चाहा है कि हम आपको पुकारें और आपका अनुग्रह और आशीर्वाद पाएं। हम विश्वास करते हैं कि आप बीमारों को चंगाई देंगे, खोए हुए लोगों को बचाएंगे और अपने वचन को हम पर जीवंत प्रकट करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जबकि हम कई रातों से आपकी प्रतीक्षा में हैं, आप हमारी इस विनती को स्वीकार करें। होने दीजिए कि पवित्र आत्मा इस प्रकार से उंडेला जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास से मानो अंधा होकर केवल परमेश्वर ही को देख सके, और परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास से लोग चिल्ला उठे, और ये सिलसिला तब तक जारी रहे जब तक कि पूरे देश में बेदारी न जाग उठे और लोगों की भीड़ उमड़ आए तथा पापी जन परमेश्वर की करुणा की दुहाई न देने लगे। तब पवित्र आत्मा बीमारों को चंगा करें, लंगड़े चलने लगें और मुर्दे जिलाए जाएं। ये सभी बातें जिनकी प्रतिज्ञा आपके वचन में दी गई है, होने दीजिए कि पूरी करी जाएं। प्रभु यीशु, आइए और अपनी वाचा पूरी कीजिए। आप आज रात हमारे बीच में आइए। हमारा विश्वास है कि आपके वादे गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आप कल, आज और युगानुयुग एक सा हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन आपका वचन नहीं टलेगा। होने दीजिए कि हमारी समझ खुली जाए। होने दीजिए कि पवित्र आत्मा आकर हमारी बंजर भूमि को ठीक कर दे। होने दीजिए कि आज रात हमारी समझ खोल दी जाए कि हम परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ को जान सकें, और वह अपने वादा किए वचन को हमारे द्वारा जीवंत कर सके, क्योंकि हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आज रात आप में से जो भी पवित्र शास्त्र में देखना चाहते हैं, वे दूसरा पत्रस निकाल लें और 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। पवित्र शास्त्र से इन वचनों पर थोड़ी देर के लिए मैं कुछ बोलूंगा। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। स्वयं देखा है कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं है, वरन जो कुछ हम कह रहे हैं उसके चश्मदीद गवाह हैं। कि उसने परमेश्वर पिता से आदर व महिमा पाई, जब उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई,
दिस इज माई बिलव्ड सन,
कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ।
एंड दिस वॉइस व्हिच केम फ्रॉम हेवन,
और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुना। और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, और तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष देवे। अब मैं इसको अपना विषय चुन रहा हूँ कि परमेश्वर अपना अनुवादक स्वयं है। हम भ्रम वाले दिनों में रह रहे हैं। हम एक इस प्रकार के समय में रह रहे हैं जब पुरुषों व स्त्रियों का शायद ही ये पता हो कि उन्हें क्या करना है। सभी कुछ बड़ी दुर्व्यवस्थित स्थिति में दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी कुछ अनेक कोणों से देखा जा सकता है। शैतान ने सब कुछ ऐसा ही कर दिया है। अब देखिए कि परमेश्वर तब तक लोगों का न्याय धार्मिकता से ठीक ठीक नहीं कर सकता जब तक कि उनको जांचने के लिए कोई मापदंड न हो। और पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वे सभी मनुष्यों का न्याय यीशु मसीह के द्वारा करेगा और यीशु मसीह वचन है। संत यूहन्ना की पुस्तक के प्रथम अध्याय में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में रहा। अब आज हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर की विशेषताओं और गुणों का प्रकटीकरण ही है। परमेश्वर में पहली बात तो यह है कि शुरू में वह परमेश्वर था ही नहीं और हम उसे एक जो अनंत है कह सकते हैं। वह परमेश्वर नहीं था क्योंकि अंग्रेजी भाषा में गॉड शब्द का अर्थ है उपासना के लिए, जबकि वहाँ कुछ भी न था जो उसकी उपासना करता। अतः वह एक अनंत था जो सारी बुद्धिमानी व ज्ञान का मुख्य निर्झर था। और ज्ञान के इस निर्झर में एक भी अणु परमाणु नहीं था, ज्योति चांद सितारे आदि कुछ भी नहीं था। और वह जिसे हम परमेश्वर के रूप में जानते हैं तथा जिसका न आदि है न अंत है, वही महान पवित्र आत्मा जो अनंत है वहाँ था और उसी के अंदर उसके फल और गुण थे। परमेश्वर होने, पिता होने, पुत्र होने, उद्धारकर्ता होने और चंगाई देने वाला होने के फल उसमें थे। ये सारे गुण और फल उसमें मौजूद थे और अब ये सभी चीजें अथवा जो कुछ भी आज हम हैं ये उसी के फल व विशेषताएं गुण हैं जो प्रकट करी गई हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि उसके विचार ही परमेश्वर के फल हैं और वचन विचारों के प्रकट किए रूप को ही कहते हैं। सब कुछ उसके विचारों में था और जब उसने कहा कि ऐसा हो जा तो वैसा ही अस्तित्व में आता गया। उसने कहा ऐसा हो जा तो वैसा ही हो गया। और अब ये याद रखिए कि आप मसीही लोग इससे पहले कि ये दुनिया बनी परमेश्वर के विचारों में थे। आप उसके विचारों का प्रकटीकरण मात्र हैं। इससे पहले कि ये सृष्टि रची जाती आप मसीह में परमेश्वर में शुरू से थे। आमीन। इस तरह से आप देखिए कि आप उसके अपने लोग बन जाते हैं और सारा मामला ये है कि परमेश्वर आप लोगों के माध्यम से स्वयं को ठोस रूप में प्रकट करता है ताकि लोग उसे पहचान सकें और देख सकें। और सारी बातों के पीछे केवल परमेश्वर है। और तब लोग अनुवाद की बात करते हैं। अभी अधिक दिन नहीं हुए जब मैं यहाँ एक सभा में वचन प्रचार कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम आपके पास वचन का गलत अनुवाद है और आप वचन का सही अनुवाद नहीं करते। अब हमें ये भी सुनने को मिलता है वे मेथोडिस्ट गिरजे में ये सुनते हैं कि बैप्टिस्ट सत्य अनुवाद नहीं करते। बैप्टिस्ट कहते हैं कि पेंतिकोस्तल सही नहीं करते। पेंतिकोस्तल वननेस को गलत बताते हैं और वननेस वाले असेंबली वालों को गलत बताते हैं और हर कोई एक दूसरे को गलत अनुवाद करने वाला बताता है। परमेश्वर स्वयं अपना अनुवादक है। उसे आवश्यकता नहीं है कि कोई उसके लिए अनुवाद करे। वे अपने लिए स्वयं अनुवाद करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जो परमेश्वर का अनुवाद कर सके? परमेश्वर अपना अनुवादक स्वयं है। और अब यहाँ वचन में हम पाते हैं कि जब पत्रस बता रहे हैं कि आदि में वचन परमेश्वर ने कहा उजियारा हो जा और उजियारा हो गया और इस प्रकार उसके कहने का अनुवाद स्वयं हो गया। जब परमेश्वर ने कुछ भी कहा और वह वैसा ही प्रकट होकर अस्तित्व में आ गया तो यह उसका अनुवाद ही तो था जो वचन उसने सत्य कहे थे। आपने देखा जब उसने ये कहा कि उजियारा हो जा तो इससे पहले कि उजियारे जैसी कोई चीज होती यह उसके विचारों में उत्पन्न हो चुकी थी। जब उसने कहा कि उजियारा हो जा तो उजियारा आकाश में उभर आया और यही उसके वचनों का अनुवाद था। किसी को उसके अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही हो गया। जब परमेश्वर कुछ कहता है और वैसा ही हो जाता है तो यही उसके वचनों का अनुवाद है। लोग ये सब कुछ क्यों नहीं देख पाते? जब परमेश्वर कहता है और कोई वादा करता है, शुरू में उत्पत्ति में उसने प्रत्येक समय और काल के लिए आदि से अंत तक अपना वचन निश्चित कर दिया था। और समय व काल बीतते बीतते इन विभिन्न दुनियावी गिरजों ने अपनी प्रथाओं व मतों से सभी कुछ गड़बड़ कर दिया है। और परमेश्वर ने हमेशा प्रत्येक समय के दृश्य में अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा है जिनके बारे में पुराने व नए नियम में लिखा है। और प्रभु का वचन सर्वदा भविष्यद्वक्ताओं के पास ही आता है। और ये कैसे होता है? ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है। परमेश्वर के वचन को प्रकट स्वयं परमेश्वर करता है और इसी से पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति का वचन सत्य है अथवा नहीं। किसी को इसका अनुवाद नहीं करना पड़ता और वचन स्वयं अपना अनुवाद प्रकट करता है। परमेश्वर जो भी वादे वचन में करता है वैसा ही घटित होता जाता है। तब इसके वचन के बारे में कुछ भी कहने से क्या लाभ होगा? ऐसा कौन पापी मनुष्य होगा जो इस बाबत कुछ कहेगा? जबकि परमेश्वर स्वयं अपने वादों को पूरा करता है तो कौन कह सकता है कि उसका अपने वचनों को पूरा करने वाला अनुवाद गलत है? वो तो स्वयं परमेश्वर है जो अपना अनुवाद स्वयं कर रहा है। परमेश्वर को इस बात की जरूरत नहीं है कि कोई उसका अनुवाद करे, क्योंकि वह जो भी प्रतिज्ञा है या वायदे करता है उन्हें सत्य प्रकट करके अपना अनुवाद स्वयं करता है। और यदि कलीसियाएं इन बातों को देख पाती और उन वचनों को देख पाती जो प्रत्येक समय व काल के लिए अलग अलग निश्चित किए गए थे, शुरू से अब तक सातों कलीसियाई कालों में भी परमेश्वर ने अपने वायदों को जो उसने पूर्व में किए थे उन सभी वचनों को जीवंत प्रकट किया है। सभी कुछ जो कहा गया था पूरा किया है और कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। वास्तव में जो जो उसने करने को कहा था ठीक वैसा ही उसने कर दिया है, क्योंकि पूर्व काल में यशाया के द्वारा जब परमेश्वर ने यह कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी तो वैसा ही हुआ। अब उन वचनों का अनुवाद कौन कर सकता था? परमेश्वर ने स्वयं ही अपने वचन का अनुवाद किया। उसने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह गर्भवती हुई। अब आप क्या हैं? आप कुछ नहीं कह सकते इस बाबत, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह हुई। किंतु गिरजे उस समय इतने अंधे हो गए थे कि वे उक्त वचन को पूरा होने के बाद भी नहीं देख पाए। आप देखें कि उन वचनों संबंधी उनके अपने ही अलग विचार थे और उन वचनों की पूर्ति उन गिरजों की आशाओं और विचारों से बहुत भिन्न थी। पत्रस यहाँ पर पीछे से संदर्भ देकर कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मसीह को अपने वचन से प्रकट किया और कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। पत्रस इत्यादि विश्वासी वहाँ खड़े थे और मसीह परमेश्वर का प्रकटीकरण था जो वहाँ खड़ा था। परमेश्वर ने मसीह को सर्वदा अपने वचन से प्रकट किया है, क्योंकि मसीह ही वचन है और वचन ही उसे जीवन प्रकट करता है। जब यीशु मसीह ने कहा कि नूह के दिनों में नूह ही में मसीह था, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? नूह ने कहा था कि बारिश होने वाली है और सारी पृथ्वी वर्षा से बर्बाद कर दी जाएगी। वर्षा हुई और इस बात को किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी। बारिश इसलिए हुई क्योंकि परमेश्वर जो नूह में था उसने कहा था कि वर्षा होगी। वह एक भविष्यद्वक्ता था और इसका प्रमाण ये था कि जो कुछ उसने कहा था उसे पूरा होना था, इसलिए इस कथन के अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं थी। नूह के आसपास के कुछ लोगों ने हो सकता है कि उससे कहा हो कि ये मनुष्य स्वयं नहीं जानता कि क्या कह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि यदि तुम्हारे मध्य में कोई भविष्यद्वक्ता या आत्मा से भरा मनुष्य हो और वो जो कुछ कहे वैसे ही पूरा हो जाए तो उसकी बात सुनकर मान लेना ये सत्य है, ये ठीक है। उसकी बात वचनानुसार होनी चाहिए और नूह की बात वचन के अनुसार थी। जब उसने भविष्यवाणी करी कि वर्षा होगी तो वर्षा हुई, इसमें किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वैसा ही हुआ जैसा कि कहा गया था। यशायाह ने कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वैसा ही हुआ। अब ऐसा कहना उस समय बड़ा अजीब अप्रत्याशित था, क्योंकि आप देखिए कि ये वचन एक कुंवारी के वास्तव में गर्भवती होने के कई सौ वर्ष के बाद पहले कहे गए थे। ये बात इतनी अधिक अजीब और अप्रत्याशित थी कि मरियम जब पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई तो उसके पति यूसुफ ने, जो एक धर्मी जन था, वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की बदनामी हो। उन दिनों में उस धर्मी यूसुफ को वैसा कैसा अजीब लगा होगा, क्योंकि उसकी मंगनी मरियम के साथ हो चुकी थी। मरियम की मंगनी हो चुकी थी और उन दिनों में इस प्रकार से वैवाहिक संबंधों को तोड़ना व्यभिचारिणी पाए जाने के समान समझा जाता था। और यूसुफ को ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि अपनी गलती को छुपाने के लिए मरियम यूसुफ को अपनी ढाल बना रही है, क्योंकि वह गर्भवती पाई गई थी जबकि अभी तक उसकी केवल मंगनी हुई थी और विवाह नहीं हुआ था। कानून और व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार की चालाकी का दंड उस समय पत्थरवा करके उसको मार दिया जाना था। और उसका पति यूसुफ एक अत्यंत धर्मी जन था और परमेश्वर पर विश्वास करता था। मरियम अपनी उन बड़ी बड़ी प्यारी आंखें उठाकर यूसुफ की ओर देखकर उससे कहती होगी, यूसुफ, जिब्राइल स्वर्गदूत मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया है कि बिना किसी मनुष्य को जाने ही मैं पवित्र आत्मा से गर्भवती हूँ। अब अगर यूसुफ पीछे पवित्र शास्त्र में खोज कर देखता तो पाता कि भविष्यद्वक्ता ने ऐसा होने के लिए कहा था। ये परमेश्वर अपने कहे गए वचनों का अनुवाद कर रहा था, आपने देखा, लेकिन ये सब बहुत अप्रत्याशित था। प्रत्येक समय और काल में यही होता रहा है, लोग परमेश्वर के वचनों से अनभिज्ञ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन बहुत असाधारण होते हैं। परमेश्वर बड़े असाधारण काम करता है और जहां असाधारणता है वहीं परमेश्वर है। दुनिया के गणित से उसकी बातें भिन्न होती हैं, जबकि दुनिया अपने हिसाब लगाती रहती है कि ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर जब आता है तो अपने कार्य असाधारण रीति से करता है। एक कुंवारी किस प्रकार गर्भवती हो सकती है? क्योंकि यूसुफ बड़ा ईमानदार जन था, उसने परमेश्वर से इस विषय में जानना चाहा। और तब परमेश्वर ने एक स्वप्न में उससे कहा, यूसुफ, दाऊद की संतान, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। परमेश्वर का साया उसके ऊपर है और वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर ने यूसुफ से किस प्रकार बातचीत करी? उसने दूसरे ढंग से, यानी स्वप्न के द्वारा बातचीत करी। अब देखिए कि सपनों के बारे में हम जानते हैं, उन पर विश्वास भी करते हैं। मैं भी सपनों पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर ने सर्वदा सपनों के द्वारा ही लोगों से संपर्क किया है, लेकिन स्वप्न द्वितीय माध्यम है। देखिए, वह गलत और सही दोनों ही हो सकता है यदि उसका अनुवाद नहीं होता है। किंतु यूसुफ के मामले में चूंकि परमेश्वर स्वयं बोल रहा था, अतः अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन दिनों में वहाँ कोई भविष्यद्वक्ता धरती पर नहीं था। पिछले 400 वर्षों से कोई उस समय भविष्यद्वक्ता उपलब्ध नहीं था। अतः यही उत्तम था कि परमेश्वर अपने पुत्र यानी यीशु की भलाई के लिए यूसुफ से स्वयं स्वप्न में बातचीत करें, ताकि अनुवाद की आवश्यकता न रहे। परमेश्वर ने कहा, मरियम सत्य कहती है, वह पवित्र चीज जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और वह परमेश्वर का पुत्र है। इसमें अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है। ईमानदार और निष्ठावान हृदयों को परमेश्वर स्वयं अपना अनुवाद तथा प्रकाशन देता है। उन सभी निष्ठावान व ईमानदार स्त्रियों और पुरुषों के लिए परमेश्वर के पास अपना अनुवाद देने का अपना विशेष तरीका है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उसके भेदों को जानना चाहते हैं। पहले तो ये देखिए कि परमेश्वर ने क्या वायदा किया है। अगर यूसुफ अपने समय की मान्यताओं से परे हटकर पीछे पवित्र शास्त्र में खोज कर देखता, तो पाता कि यशायाह ने कहा था कि एक कुंवारी इसी प्रकार से गर्भवती होगी। और जैसा पत्रस ने कहा है कि पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यीशु के जन्म संबंधी वचन धर्मशास्त्र में पहले से दे दिया गया था। किसी भी मनुष्य को उन वचनों का अनुवाद अपने ढंग से करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसा कहा गया है ठीक वैसा ही घटित होना आवश्यक है। एक कुंवारी का गर्भवती होना उस समय के लिए वचन द्वारा किए गए परमेश्वर की वाचा का प्रकटीकरण ही था। परमेश्वर ने ऐसा होना कहा था और वैसा ही हुआ, और बस यही बात है। यीशु ने कहा था जब वो यहाँ धरती पर था, और लोग उनकी उस महान वे अद्भुत सेवकाई व आगमन को नहीं समझ पाए थे। वे लोग यीशु को नहीं समझ पाए थे। यीशु ने उनसे कहा था, पवित्र शास्त्र में खोज कर देखो। मेरी बातें तुम्हें विस्फोटक प्रतीत होती हैं। पवित्र शास्त्र में खोज कर देखो, तुम समझते हो कि तुम्हें उनमें अनंत जीवन मिलेगा। ये वही है जो मेरी ही गवाही देते हैं। देखा आपने, ये वचन ही तो तुम्हें बताएगा कि मैं कौन हूँ। देखिए कि परमेश्वर ने उस समय के लिए पहले से वचन कहा था, और उस समय उसे प्रकट होना था कि परमेश्वर हमारे मध्य में डेरा करेगा, यानी इम्मैनुअल डेरा करेगा। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता कहलाएगा, और उसका नाम इम्मैनुअल कहलाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे मध्य में। परमेश्वर दाऊद में था, वो ही मूसा में था, और उसी समय के लिए उसने तरह तरह से पिछले समय में स्वयं को प्रकट किया था। किंतु इस विशेष समय में एक कुंवारी को गर्भवती होकर एक पुत्र जन्ना था, और इस प्रकार परमेश्वर हमारे मध्य में होना था। यही कारण था कि उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया, कि वह स्वयं को परमेश्वर बताता था, और उसने सबत का दिन भी तोड़ दिया था। वह परमेश्वर था और वह सबत के दिन का भी परमेश्वर था। हालांकि वो देखने में एक साधारण मनुष्य और नबी सा प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि वह तो स्वयं परमेश्वर भविष्यद्वक्ता था। वह तो स्वयं परमेश्वर के उस वचन की परिपूर्णता था जो परमेश्वर ने उसके बारे में कहे थे। उसने लोगों से कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराकर मुझ पर दोष लगा सकता है? धर्मशास्त्र में खोज कर देखो, तुम समझते हो कि उन्हें तुम में अनंत जीवन मिलेगा? ये वही है जो मेरी ही गवाही देता है। लेकिन वो तो किसी और समय में मसीहा के आने के विचारधारा के प्रकाश से चकाचौंध थे, और उनके मतों ने उन्हें अंधा बना दिया था। जैसा कि मैंने कुछ सप्ताह पूर्व चकाचौंध प्रकाश में रहना नामक विषय पर उपदेश दिया था, कि चकाचौंध प्रकाश एक मरीचिका या मृग तृष्णा है, जिसमें सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है और वह धोखा मात्र होता है, और किसी भी समय का प्रतिबिंबित प्रकाश केवल धोखा और भ्रम है। लोग सर्वदा किसी ऐसे समय के प्रकाश में चलते रहे हैं जो वर्षों पहले घटित हुआ था। लूथरियन लोग लूथर के समय के वास्तविक प्रकाश के भ्रमित प्रतिबिंबित प्रकाश में चलते रहे हैं। लूथर के समय का प्रकाश उसके समय में ठीक था, वेस्ली का उसके समय में, और पेंटिकोस्टल का प्रकाश उनके अपने अपने समय में ठीक था। हम आगे को चल रहे हैं और सीढ़ी के ऊपर की ओर, यानी एक दूसरे समय के अंदर पहुंच चुके हैं। हमें इसी प्रकार आगे आगे बढ़ते जाना है और पीछे की ओर नहीं देखना है। जब हमें हमारे समय का मूल प्रकाश मिलता है, तो हम ये सोचकर कि बस यही अंतिम बात है, उससे मत और सिद्धांत बनाकर स्वयं को उसकी सीमाओं में बांध लेते हैं, लेकिन वो केवल उसी समय के लिए उपयुक्त है, क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पवित्र शास्त्र को खोज कर देखिए कि आज के लिए क्या वाचाएं हैं, क्या वाचाएं कही गई हैं, और तब पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, और तभी हम कह पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। लूथर के समय को आप पवित्र शास्त्र में सार्दिस की कलीसिया के काल पढ़कर देख सकते हैं कि उस समय के लिए ठीक क्या क्या प्रतिज्ञाएं दी गई थीं। देखिए कि किस तरह का सवार उस घोड़े पर था। एक चालाक मनुष्य का रूप था, और देखिए कि परमेश्वर की ओर से उसका सामना करने के लिए मनुष्यों के रूप में ही सुधारक भेजे गए। वैसली के समय में और बाद में सभी को पवित्र शास्त्र में देखिए कि किस प्रकार चलते चलते प्रत्येक समय में ये सफर पूरा होते होते पेंतिकोस्तल काल तक आ पहुंचा। धर्मशास्त्र में खोज कर देखिए कि हम कहाँ आ पहुँचे हैं। यही कारण था कि यीशु ने उनसे कहा कि धर्मशास्त्र में खोज कर देखो, देखिए कि हम कहाँ हैं। मेरा विश्वास है कि हम ठीक उस समय में आ पहुँचे हैं जबकि परमेश्वर के पुत्र को आना है। मुझे विश्वास है कि हम समय के उन क्षणों में पहुँच चुके हैं जबकि यीशु मसीह किसी भी क्षण आ सकता है। मेरा विश्वास है कि पवित्र शास्त्र ये बता रहा है कि हम इस दुनिया के इतिहास की समाप्ति के अंतिम क्षणों में आ पहुँचे हैं। मैं उन सारी बातों को देख पा रहा हूँ, सभी नामधारी गिरजों यानी डिनोमिनेशंस को एक्यूमेनिकल काउंसिल में जाते देख रहा हूँ जो कि उस पशु का चिन्ह है। मैं रोमन साम्राज्य और अन्य सभी के कामों को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वे एक जगह एक संगठित होते जा रहे हैं और पवित्र शास्त्र के प्रकाश को लोगों के सामने से हटाते जा रहे हैं, गायब करते जा रहे हैं। सभी को तब केवल उन्हीं के अपने धोखे वाले प्रकाश में चलना पड़ेगा, वरना लोग जिंदा न रह पाएंगे। देखिए कि हम अंत समय में आ पहुँचे हैं। अब हमारे पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि हम परमेश्वर को थामे रहें और उसके वचन पर विश्वास करें। वचन सर्वदा ठीक और सत्य है। लादूकिया की समय को देखिए, केवल समस्त कलीसियाई कालों में इसी काल में मसीह को गिरजों से बाहर किया जाना था और बाहर खड़ा वो खटखटा रहा है। ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है? ये एक्यूमेनिकल परिषद उसे बाहर करने जा रही है। पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि वो गिरजों से बाहर कर दिया जाएगा और वह आज बाहर है। क्या बाहर किया गया है? वचन को बाहर कर दिया गया है और परमेश्वर ही वचन है। वह वचन हमेशा से रहा है और वह आज रात भी वचन ही है। परमेश्वर ही वचन है। पवित्र शास्त्र बताता है कि वचन दोधारी तलवार से भी तेज धार वाला है, जैसा इब्रानियों 4 अध्याय में लिखा है कि वह हृदय के गुप्त भेदों व विचारों को प्रकट करने वाला है। उस समय वहाँ वचन यानी यीशु खड़ा था और जब उसने उनसे वचन के संदर्भ में कुछ कहा तो लोगों को उसे पहचान जाना चाहिए था। देखिए कि उसने क्या किया। एक दिन जब वो अपनी सेवकाई के प्रथम दिवस उनके मध्य में खड़ा था, शिमोन पतरस नामक एक मनुष्य उसके पास आया और जब पतरस ने यीशु की ओर देखा तो यीशु ने कहा, तेरा नाम शिमोन है और तू योना का पुत्र है। पतरस को तब ये जानना चाहिए था कि मूसा ने कहा था कि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मध्य से मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा जिसकी तुम सुनना। और यहाँ एक ऐसा मनुष्य खड़ा था जिसने जीवन में उसे पहले कभी नहीं देखा था और वो बता रहा था कि तेरा नाम शिमोन है, तू योना का पुत्र है। क्यों नहीं? वो तुरंत जान गया ये वही भविष्यद्वक्ता है और इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि कई सौ वर्षों से उनके मध्य में कोई भविष्यद्वक्ता नहीं आया था और इसने उसके बारे में बता दिया था कि वो कौन है। और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि वह शिमोन उस यीशु को ग्रहण करने पाया। फिलिप्पुस उस समय मुड़कर गया और नथैनियल को एक वृक्ष के नीचे बैठा पाया और तब वो उसे यीशु के पास लेकर आया। यीशु ने उससे कहा, देखो इस इसराइली मनुष्य में कोई बुराई नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। और उसने यीशु से पूछा, रब्बी तू मुझे कब से जानता है? यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तू उस वृक्ष के तले बैठा था मैंने तुझे देखा। और उसने कहा, रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा है। उसे पता चल गया कि ऐसा ही है, इसमें किसी अनुवाद की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही पवित्र शास्त्र में कहा था। वहाँ पर वो लोग भी खड़े थे जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह मनुष्य दुष्ट आत्माओं का सरदार बेलज़बूब है और इसके पास कोई ऐसी चाल है जो ये आगे की बातें बता देता है, वगैरह वगैरह। यीशु ने उन लोगों की ओर देखकर कहा, तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में ये सब कह रहे हो और ये पाप तो क्षमा कर दिया जाएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा और यही सब कहेगा, यही सब करेगा, तो उसके विरुद्ध कुछ भी मत कहना। ना तो इस दुनिया में उसके विरुद्ध किया गया पाप क्षमा किया जाएगा और ना ही उस दुनिया में जो आने वाली है। यीशु हमारे दिनों के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है और ये कह रहा है, और ये वह दिन है जो हमें देखने हैं, क्योंकि वह कल आज और युगानुयुग एक सा है। याद रखिए कि मूसा के रूप में भी वह यीशु मसीह ही था, दाऊद के रूप में भी जो था वो यीशु मसीह था। जब दाऊद उस पहाड़ के ऊपर गया और लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने की बात से दुखी होकर रोया, तब उसके अंदर कोई अन्य नहीं वरन यीशु मसीह था, क्योंकि लगभग 800 वर्षों के बाद दाऊद के संतान यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर चढ़ा और नीचे यरूशलम को देखकर रो पड़ा। उसने कहा, हे यरूशलम, मैंने कितनी बार चाहा कि जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपा लेती है, मैं भी तुझे छिपा लूं, परंतु तूने न चाहा। जब यूसुफ कैद खाने में था तो वो भी यीशु ही था। जब उसे चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया तो वो यीशु ही था। जब उसे पोती पर नामक जल्लाद के यहाँ पहुँचाया गया तो वो यीशु ही था। जब वो फिरौन के दाएं हाथ बैठाया गया और जब वो उठकर कहीं जाता था तो तुरी फूंकी जाती थी और हर एक घुटना उसके आगे झुकता था, वो यीशु ही था। यूसुफ के द्वारा ही कोई फिरौन से मिल सकता था, यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। वचन जिसके द्वारा प्रतीक्षाओं और प्रतीकों में भविष्यवाणी करी गई थी, उस वचन की परिपूर्णता का प्रतीक यीशु वहां अब स्वयं खड़ा था, क्योंकि वही तो वचन है। जब यीशु धरती पर आया तो उसने वही सब किया जो पिछले भविष्यवक्ताओं ने किया था। यही कारण था कि उन लोगों को पता चल गया कि यीशु ही परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण है और इसके लिए किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। जब नथनेल ने देखा तो उसके सामने गिरकर कहा, तू इसराइल का महान राजा और परमेश्वर का पुत्र है। हम जान गए हैं कि कोई अन्य मनुष्य ये सब नहीं कर सकता। निकोदेमस जो रात को यीशु के पास आया था, उसने भी फरीसियों के प्रतिनिधि के रूप में यही सब कहा था। किंतु आप देखिए कि अपनी धार्मिक परिषद के रीति रिवाजों से वे लोग इस प्रकार बंधे थे कि वे यीशु को ग्रहण नहीं कर पाए। निकोदेमस ने फरीसियों के विचार प्रकट करते हुए कहा था कि रब्बी हम, ये हम कौन है? अरे उनकी परिषद। हम जानते हैं कि तू एक उत्तम गुरु है और परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि कोई मनुष्य इस प्रकार के काम नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो। उन्होंने उसका अनुमोदन किया था, वो जान गए थे कि यह वही वचन है, लेकिन वे लोग अपने सिद्धांतों के बंधनों से बंधे थे। और परमेश्वर ने पिछले 40 वर्षों में पवित्र आत्मा के 32 बपतिस्मों के द्वारा इस पूरे राष्ट्र को हिला कर रख दिया है, लेकिन लोग इस दान की परिधि से आज भी बाहर खड़े हैं, क्योंकि वो अपने रीति रिवाजों से बंधे किसी पुराने समय के प्रकाश की चमक में जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि हर कोई मैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरियन या ऐसा ही कुछ बनना चाहता है। देखिए कि ये यही तो अंधा बनाने वाला चमकीला प्रकाश है। वे लोग मूसा के समय के प्रकाश के प्रतिबिंब में रह रहे थे। उन्होंने क्या कहा था? यही कि हम मूसा के शिष्य हैं। यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम मूसा को जानते तो मुझे भी जान जाते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में ही तो लिखा था। यदि आपने लूथर को जाना है तो आप इस पीढ़ी को भी जान जाओगे। यदि आपने मेथोडिस्ट को जाना है तो आप इस समय को भी जान लोगे, क्योंकि मसीह ने इस पीढ़ी के लिए लिखा है और जो वचन आज पूरा हो रहा है उसे इसी पीढ़ी में पूरा होना जरूरी है। इसके लिए किसी को अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का अनुवाद स्वयं करता है। परमेश्वर स्वयं अपना अनुवाद करता है, क्योंकि एक वही है जो अपना अनुवाद कर सकता है। परमेश्वर की वाचाएं उसे एकदम सत्य प्रकट करती हैं और जो कुछ वो कहता है यही उसका अनुवाद है। अब समय बचाने के उद्देश्य से संत यूहन्ना 14:12 में यीशु ने कहा, वह जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। क्या उसने ऐसा कहा था? हाँ, ये सत्य है। इसमें किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है। जब कोई वैसे ही काम करता है तो ये परमेश्वर ही है जो निश्चय ही उसमें होकर ये कार्य करता है। उसने पवित्र शास्त्र में ये भी कहा है कि जैसा लूत के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में भी होगा। यीशु ने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? वास्तव में उसने ऐसा कहा था और इसमें अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि इसका अर्थ ठीक वही है जो उसने कहा था कि जैसा लूत के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। लूत के दिनों में कैसा हुआ था? आइए पीछे जाकर कुछ क्षणों के लिए देखें कि उस समय क्या हो रहा था। लूत के दिनों में जैसा कि प्रत्येक सभा में और भीड़ में होता आया है, तीन प्रकार के लोग थे, अर्थात विश्वासी, अल्पविश्वासी और अविश्वासी। हम पाते हैं कि सदोमी लोग अविश्वासी थे, लूत भोंगी विश्वासी और इब्राहिम विश्वासी था। इब्राहिम ही अविश्वासी था जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। वही था जो प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके प्रति आशावान था। आमीन। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो, परंतु आमीन शब्द का अर्थ ही यह है कि ऐसा ही हो, और ये सच है। इब्राहिम इस समय सदोम में नहीं था, वरन वो सदोम से बाहर ऊंचे स्थान पर था और वह आज की इस आत्मिक कलीसिया की प्रतीक्षाया व प्रतीक था जो इस समय गिरजों से बाहर खड़ी है। और लूत आज के नामधारी गिरजों के रूप में सदोम में था। देखिए कि पवित्र शास्त्र कहता है कि सदोम के पापों से लूत की धर्मी आत्मा नित्य पसीज उठती थी। लेकिन क्यों? उसमें साहस न था कि उसके विरुद्ध बोलता। आज भी बहुत से भले पुरुष गिरजों में बैठे महिलाओं को अल्पसंख्यक वस्त्र पहने और पुरुषों को गलत कार्य करते देख रहे हैं। अनेक सदस्य प्रार्थना सभाओं में जाने के बजाय रविवार को पिकनिक पार्टियों में जाना या गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। बुधवार को गिरजे जाने के बजाय शाम को लोग दूरदर्शन देखना आदि को प्राथमिकता देते हैं। लूथ सरी के लोग चाहते हैं कि इन बातों के विरोध में कुछ कहें, लेकिन बोर्ड उन्हें गिरजों से बाहर निकाल देगा। ये फिर से लूथ का समय है जब वो अपने घर की खिड़की से बाहर का पाप देख रहा है और पाप को पाप कहने से डर रहा है। इब्राहिम उनके साथ नहीं था, वरन बाहर था और आज के आत्मिक गिरजे का प्रतीक था। अब देखिए कि अन्य जातियों वाले उस सदोम नगर में आग व गंधक की वर्षा होने से पहले क्या हुआ था। आज की इस अन्य जातियों की दुनिया के आग से नष्ट होने और इस सांसारिक साम्राज्य के जलाए जाने की वह एक पूर्व छाया थी। प्रभु ने कहा था इस स्वर्ग से आग गिराई जाएगी और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और सदोम की घटना इसकी प्रतिछाया थी। अब हम देखें कि इब्राहिम सदोम में नहीं वरन सदोम से बाहर था और लूत तब तक सदोम ही में था। गर्मियों की एक सुबह लगभग 11 बजे का समय रहा होगा जब इब्राहिम ने तीन असाधारण से दिखने वाले मनुष्यों को मार्ग से अपनी ओर आते देखा था। वह उस समय बांज वृक्ष के तले बैठा आराम कर रहा था। शायद उस सुबह वो अपने पशुओं को चराने निकला था और अब लगभग दोपहर के समय वहाँ बैठकर सुस्ता रहा था जब उसने आश्चर्यजनक रूप से उन तीन मनुष्यों को अपनी ओर आते देखा। उड़ी ऐसी असाधारण बात जरूर थी कि उन्हें देखते ही कानों में किसी संकेत की घंटी सी बज उठी। हे प्रभु, परमेश्वर के बारे में असाधारण रीति से यही होता है कि जब वह मनुष्यों के मध्य में आता है तो एक घंटी सी बज उठती है। लोग पहचान जाते हैं और ऐसा कुछ होता है जो लोगों को ये सब बताता है और परमेश्वर की उपस्थिति को जाहिर करता है। इब्राहिम शीघ्रता से उठकर उनके पास आया और उनसे बोला, मेरे प्रभु, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और एक टुकड़ा रोटी लाता हूँ कि उससे तृप्त होकर आप तब मार्ग पर आगे बढ़ जाएं। तब वो पशुओं के झुंड में गया और एक बछड़ा लेकर उसे मारकर अपने नौकर को दिया कि उसे फुर्ती से पकाए। फिर वो तंबू के भीतर गया और सारा से कहा कि फुर्ती से मैदा गूंद कर चूल्हे पर फुलके पका। फिर वो उस भोजन को लेकर आया और उन्हें खाने को दिया। जब वे भोजन कर रहे थे और इब्राहिम वहाँ खड़ा था तो देखा गया कि वह मनुष्य सदोम की ओर देख रहा था। आपको याद होगा कि दो मनुष्य दूत सदोम की ओर चले गए थे। कृपया इस बात को नजरअंदाज न करें, मैं यहाँ यीशु मसीह के कथन का उल्लेख कर रहा हूँ। उनमें से दो जन सदोम को चले गए ताकि लूत को वहाँ से बाहर ला सकें और बाकी सभी को नष्ट कर सकें। उन दो जनों ने वहाँ जाकर प्रचार किया। उनमें से एक इब्राहिम के पास ठहरा रहा और उसने जो चिन्ह दिखाया उस पर ध्यान दें। नीचे सदोम में भी एक चिन्ह दिखाया गया और सदोमियों को अंधा कर दिया गया। वचन का प्रचार सर्वदा अविश्वासियों को अंधा बना देता है। और ध्यान दें कि उससे क्या हुआ। और अब देखिए कि एक जन इब्राहिम के पास ठहरा रहा और उसके सम्मुख एक चिन्ह दिखाया। क्या आप इतिहासकारों ने या धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वालों ने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया है? चर्च के इतिहास में कभी भी कोई ऐसा समय नहीं हुआ जब कोई ऐसा व्यक्ति नामधारी गिरजों में प्रचार करने गया हो जिसका नाम इब्राहिम की तरह हाम से H-A-M से समाप्त होता हो, लेकिन आज उनके पास ऐसा मनुष्य है। ये सत्य है। बिली ग्राहम वहाँ जाकर उन्हें बाहर लाने का उपदेश देकर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ये परमेश्वर का दास है जो नामधारी गिरजों, राजनीतिज्ञों आदि के मध्य आज प्रचारक के रूप में खड़ा उनके नष्ट होने का संदेश दे रहा है। उस दिन लोगों ने जब उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहा तो उन्होंने उस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। परमेश्वर इस बात के लिए उन्हें आशीष दे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद वो उन शराब बनाने वाली कंपनियों को कुछ न कह पाएंगे। वो उन्हें आने ही नहीं देंगे। उन सिगरेट निर्माताओं आदि के लिए उन्हें आने न देने के इस अभियान में करोड़ों डॉलर खर्च करना मामूली बात होती, क्योंकि वैसे भी बिली ग्राहम उनको बंद करने के लिए प्रचार में लगे हैं। देखिए कि परमेश्वर के संदेश वाहक के रूप में वे इन सदोमियों के मध्य भेजे गए हैं और ये बिल्कुल सत्य बात है। एक मनुष्य वहाँ ऊपर इब्राहिम के पास था। इन वो उन दो आधुनिक उपदेशकों की भांति नहीं था जो वहाँ वचन प्रचार करने भेजे गए थे। ध्यान दीजिए कि दो जन सदोम में प्रचार हेतु भेजे गए जबकि एक ऊपर इब्राहिम के पास ठहरा रहा, और वो जो इब्राहिम के पास ठहरा रहा उसने एक चिन्ह दिखाया। अब ध्यान दीजिए कि उसका नाम अब्राहम और उसकी पत्नी का नाम सारा था। एक या दो दिन पहले परमेश्वर उसके पास आया था और उससे कहा था कि मैं तेरा नाम बदलकर अब्राहम से इब्राहिम कर रहा हूँ। देखिए कि ग्राहम में GRAHAM में 6 वर्ण हैं और 6 की संख्या मनुष्य को जाहिर करती है, किंतु इब्राहिम यानी ABRAHAM में 7 वर्ण हैं और अंत में HAM हाम लगा है। अब उस आत्मिक कलीसिया के प्रतीक इब्राहिम से उसने कहा, इब्राहिम, अब्राहम नहीं कहा, तेरी पत्नी सारा नहीं कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? देखिए कि इब्राहिम ने क्या कहा, वो तेरे पीछे तंबू में है। और उसने कहा, मैं तेरे पास फिर आऊंगा। ध्यान दीजिए कि उसने सर्वनाम मैं का प्रयोग किया और यह ठीक परमेश्वर के वाचानुसार था। वो खुदा था जो बोल रहा था और उसने कहा, मैं तेरे पास फिर आऊंगा। और सारा अपने मन में हंस दी। हम समझ सकते हैं कि उसने हंसी। उसने हृदय में सोचा, मैं बूढ़ी हूँ और मेरा पति इब्राहिम भी 100 वर्ष का बूढ़ा है और हमारी जवानी और 100 वर्ष पूर्व बीत चुकी है। उसने सोचा कि हम अब बूढ़े हो चुके हैं तथा वैवाहिक जीवन के आनंद से वंचित हैं। उसने सोचा कि हमें पुत्र कैसे प्राप्त होगा, ये बात संभव नहीं है। और परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में देहधारी था, उसने कहा, सारा पीछे तंबू में मेरी बात पर संदेह करके क्यों हंसी और क्यों संदेहवश ऐसी बातें उसने सोची। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या इसी प्रकार की सेवकाई यीशु मसीह ने नहीं करी। यीशु मसीह ने उस भीड़ की ओर देखकर उनके हृदय में उठ रहे विचारों को जान लिया था। उसने पतरस को बता दिया था कि वह कौन है और उसके माता पिता का नाम क्या है। उसने नथैनियल को भी सब कुछ बता दिया था। उसने कुएं पर उस स्त्री से बात करते हुए पूछा था, मुझे जल पीने को दे, और तब उसके बारे में सभी कुछ बता दिया था। उस स्त्री ने उत्तर दिया कि श्रीमान, आप लोग यहूदी हैं और सामरी लोगों से किसी प्रकार का व्यवहार रखने की प्रथा नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, अगर तू जानती कि तू किसके साथ बातचीत कर रही है तो तू मुझसे पीने को पानी मांगती। बातचीत चलती रही और यीशु ने उससे कहा, जा जाकर अपने पति को बुला ला। स्त्री ने कहा, मेरे पास कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है, तूने पांच पति किए थे। स्त्री ने उत्तर दिया, जी हाँ श्रीमान। उस स्त्री और उस समय के शास्त्रियों और उनकी धार्मिक परिषद के विचारों के अंतर पर ध्यान दीजिए, जो कि किसी विगत समय के प्रकाशीय भ्रम में रह रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये शैतान की सहायता से ऐसा करता है और शैतान है, क्योंकि उन्हें अपनी सभा को कुछ ना कुछ तो समझाना ही था। लेकिन इस बेचारी स्त्री ने, जिसके हृदय में पहले से चुने जाने वाला छोटा सा अंकुर छिपा था, इसने क्या किया? वो अपनी उस व्यभिचारिणी वाली स्थिति से हताश और निराश हो चुकी थी। लेकिन जब उसने यीशु को गुप्त बातें बताते देखा तो उसने कहा, श्रीमान, मैं सोचती हूँ कि तू भविष्य वक्ता है। 400 वर्षों में हमारे मध्य कोई नबी नहीं आया है और हमें बताया गया है कि जब मसीह आवेगा तो ऐसा ही करेगा। ओ प्रभु, वह बीज जो उसके हृदय में छिपा था तुरंत जीवंत होकर यीशु को पहचान गया। क्यों? इसमें अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं थी। यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ, और इसमें अनुवाद की क्या जरूरत है। उसने आश्चर्यकर्म दिखाया और इस बात का प्रमाण दे दिया कि वही मसीहा है। आमीन। और ठीक वायदा किए हुए परमेश्वर के वचनानुसार ही सारे काम किए। मूसा ने कहा था कि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरी तरह एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा करेगा। क्या हो रहा था? वचन जीवंत प्रकट हो रहा था। वो स्त्री नगर को दौड़ गई और लोगों से कहा कि आओ देखो, एक मनुष्य है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, जो कुछ मैंने किया है। क्या ये वही मसीह तो नहीं? क्या ये कहीं वही तो नहीं है, क्योंकि इसने बता दिया है कि मैंने क्या क्या किया है। अब ध्यान दीजिए कि वहाँ ऊपर उस मनुष्य ने भी यीशु ही था। उस मनुष्य में यीशु था जिसने अपनी पीठ के पीछे तंबू के अंदर जो कुछ सारा के हृदय में वो सोच रही थी, वो सब कुछ बता दिया था। इब्रानियों की पुस्तक के चौथे अध्याय में वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज धार वाला है और चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये वचन है, और जब भी कोई भविष्यद्वक्ता आया वो वचन साथ लेकर आया, और वह उस समय या पीढ़ी के लिए वचन बना। और उसने क्या किया? एक भविष्यद्वक्ता के रूप में लोगों के हृदय में उठ रहे विचारों को जान लिया। यीशु मसीह के रूप में यही हुआ, क्योंकि वह तो वचन की परिपूर्णता था। और यीशु ने कहा कि जैसा सदोम के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। परमेश्वर का आत्मा फिर से इस धरती पर एक देहधारी मनुष्य के रूप में आएगा। परमेश्वर देहधारी मनुष्य के रूप में प्रकट होगा। आमीन। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं? और वो वही सब करेगा जो परमेश्वर ने एक मनुष्य के शरीर में उपस्थित होकर सदोम में किया था। याद रखिए कि वो एक वादा किए हुए पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उसके ठीक बाद प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र का आना हुआ। इससे पहले कि प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र आए, सदोम और इब्राहिम के लोगों के लिए वो अंतिम चिन्ह था जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाया था। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है? और अभी आत्मिक कलीसिया उसी प्रकार के समय में आ पहुंची है। किसी ने पूछा था, भाई ब्रनम, क्या आप ये कहते हैं कि इब्राहिम के पास मनुष्य रूप में खुदा खुद आया था? पवित्र शास्त्र बताता है कि वो परमेश्वर था, और इसमें अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है। वह एलोहिम है, और इब्राहिम ने उसे इसी नाम से पुकारा था। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। एलोहिम का अर्थ है एक वह जो सब कुछ कर सकने में समर्थ है, सब प्रकार से परिपूर्ण है। वो प्रथम और आखिर है, वो प्रारंभ और अंत है, वो एलोहिम है। इब्राहिम ने उसे एलोहिम कहकर पुकारा था। एलोहिम शब्द इब्रानी भाषा का है, और इसका अर्थ है परमेश्वर, अर्थात जो आदि से है, परमेश्वर एलोहिम। वो एलोहिम मनुष्य की देह में प्रकट हुआ, मनुष्यों के वस्त्र पहने, और उसने मनुष्यों के लिए बना भोजन खाया। आमीन। ये चिन्ह था कि अंत के दिनों में परमेश्वर फिर अपने लोगों में मनुष्य के शरीर के रूप में प्रकट होगा। आमीन। यीशु ने कहा था कि जो काम मैं करता हूँ वही तुम भी करोगे, और जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। आमीन। इसके लिए अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आवश्यकता है वचन के जीवंत प्रकट होने की। आमीन। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज रात आपकी इन बातों को तथा वाचाओं को जो आपने हमें दी हैं आपके सामने रख रहे हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जो आपके वचन को जीवंत बना सके। आपने कहा था कि उजियारा हो जा, और उजियारा हो गया था, इसमें किसी को अनुवाद करने की जरूरत नहीं हुई क्योंकि जो कहा गया था वैसा ही प्रकट हो गया। जैसा कि हमने यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा वचन देखा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वैसा ही हुआ। इसमें अनुवाद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुंवारी गर्भवती हुई और वैसा ही हुआ। आपने कहा था कि यीशु का जन्म बैतलहम में होगा। हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं क्योंकि तुम में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। आपने ये भी बताया था कि वो क्या क्या काम करेगा, सलीब से पुकार के वो क्या कहेगा, किस प्रकार उस पर दोष लगाया जाकर उसे दंड मिलेगा और उसके हाथों और पैरों को छेदा जाएगा। हमारे पापों के लिए उसे घात किया गया, हमारी दुष्टता के लिए उसे सताया गया, हमारी शांति के लिए उसे दंड मृत्यु दंड दिया गया, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। किस प्रकार से दाऊद ने कहा था कि मैं उसके प्राण को अधोलोक में न छोड़ूंगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने दूंगा। और तीसरे दिन इससे पहले कि 72 घंटे बीतने पर उसका शरीर सड़ने लगता, परमेश्वर का वचन क्या उठा, वो जी उठेगा। लोगों ने कहा कि कोई उसकी देह चुरा कर ले गया और इस बात पर लोग आज तक विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। वचन साक्षात होकर जी उठा था और जी उठने पर यीशु मसीह ने कहा, लो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हम विश्वास करते हैं कि आप आज रात यहाँ हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप आज रात भी उसी यीशु मसीह की सामर्थ्य में हैं जो पहले यहाँ धरती पर आया था। आप आज उन आँखों, बाजुओं, टांगों, मुंह, प्राणों और देहों को ढूंढ रहे हैं जिनके माध्यम से आप स्वयं को प्रकट कर सकें। परमेश्वर हमें पवित्र कीजिए कि हम अपने मध्य जीवते यीशु मसीह को साक्षात देख सकें। प्रभु यीशु आइए, तब वैसा ही होगा जैसा उन यूनानी मनुष्यों में यीशु को देखने की भूख थी और उन्होंने कहा था, श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं, और उन्होंने उसे देखा। आह, कितना रोमांच हुआ होगा जब उन्होंने यीशु को देखा होगा। प्रभु परमेश्वर, आज भी आप वही हैं और आपका वादा है कि यदि हमारे अंदर आपकी भूख होगी तो हम आपको देख सकेंगे। थोड़ी देर में ये दुनिया मुझे फिर न देखेगी, अविश्वासी कहते हैं, परंतु तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, परंतु तुम्हारे अंदर जगत के अंत तक वास करूंगा। हम जानते हैं कि आप कल, आज और युगानुयुग एक सा हैं। प्रभु, वचन में जो कहा गया है, जो लिखा गया है, उसे आपकी महिमा के लिए पूरा होने दीजिए ताकि ये कहा जा सके कि आप अपने वचन को पूरा करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष देवे। अब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि बिली ने 1 से 100 नंबर तक के प्रार्थना पत्र जारी किए हैं या कुछ इसी तरह प्रबंध किया है, वह यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। प्रार्थना कार्ड का क्या नंबर है, आप में से कोई देखकर बताएं, या तो वो कोई संख्या होगी या फिर ABC से शुरू होगी। कृपया बताएं कि क्या है, ए है। अच्छा, ठीक है, आइए हम इसे शुरू करते हैं। कृपया 1, 2, 3, 4, 5 कार्डधारी व्यक्ति उठ जाएं। A नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आ गया है। नंबर 4 को मैंने आते नहीं देखा है। प्रार्थना कार्ड नंबर 4 आगे आइए। 1, 2, 3, हो सकता है ये लोग खड़े होने की स्थिति में ना हो। यदि ऐसा है तो कृपया आप अपने पास के व्यक्ति का प्रार्थना पत्र देखें, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास प्रार्थना कार्ड हो लेकिन वो खड़ा होने की स्थिति में ना हो। शीघ्रता कीजिए। 4 नंबर आ गए, नंबर 5 आ गए, नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आइए। जैसे ही आपकी संख्या पुकारी जाती है कृपया आगे आते जाइए। नंबर 1, 2, 3 वाले व्यक्ति कृपया इस ओर आ जाएं। प्रार्थना पत्र नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाले लोग कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 संख्या वाले लोग नियत स्थानों पर आते जाएं। जो उठकर नहीं आ सकते हैं वो, मैं एक नवयुवक को पीछे व्हील चेयर में बैठा देख रहा हूँ। बेटे, जब तुम्हारा नंबर पुकारा जाए और तुम आगे ना आ पाओ तो सिर्फ अपने हाथ उठा देना, मैं तुम्हें आगे लाने का प्रबंध कर लूंगा। देखिए, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और बीमार हैं, आप हाथ उठाइए कि हम जान सकें। ठीक है, आप लोग अपने हाथ उठाइए। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं जबकि प्रार्थना के लिए लोगों को एकत्रित किया जा रहा है? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है? कितने लोग विश्वास करते हैं? इन सेवकों को देखिए भाइयों, क्या वचन में ये नहीं लिखा है कि वो प्रधान महायाजक है जिसे हम अपनी कमियों व अवगुणों सहित छू सकते हैं? क्या ये सत्य है? कितने लोग इस बात पर यकीन करते हैं? मेहरबानी से अपने हाथ उठाइए। वो महायाजक है जिसे हम अपनी कमियों सहित छू कर चंगाई पा सकते हैं। तब अगर पवित्र शास्त्र बताता है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? तब आज वो किस प्रकार के काम करेगा? वो वैसे ही अद्भुत कार्य करेगा जो उसने कल किए थे। क्या ये बात सत्य है? आज रात वो कहाँ बैठा है? वो परम प्रधान परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, बल्कि मेमने के रूप में बैठा है, और उसका पवित्र आत्मा यहाँ इस भवन में उसकी पहचान कराने के लिए उपस्थित है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तब क्या हुआ था जब एक दिन एक स्त्री ने उसके वस्त्रों को छुआ था। उस स्त्री के पास भी हम कह सकते हैं कि प्रार्थना पत्र नहीं था, परंतु उसने यीशु के वस्त्रों को छुआ था। और जब उसने उसके वस्त्रों को छुआ था तो यीशु ने पीछे मुड़ के कहा था कि मुझे किसने छुआ है। पतरस ने इस पर झड़कते हुए कहा था, प्रभु ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि हर कोई तुझ पर गिरा जा रहा है, इतनी भीड़ है और तू पूछ रहा है कि मुझे किसने छुआ है। यीशु ने कहा, मगर मैं सोचता हूँ कि मुझमें से सामर्थ निकली है। इस बात को कितने लोग जानते हैं? सामर्थ का अर्थ है शक्ति उसमें से निकली थी। मुझे किसी ने विशेष विश्वास से छुआ है और मुझमें से सामर्थ निकली है। और यीशु ने पीछे घूमकर उस भीड़ पर दृष्टि डाली और उस स्त्री को ढूंढ लिया जिसके विश्वास की धारा से सामर्थ उसमें से निकली थी। हर कोई यीशु को थाम कर उससे कहता था कि हे रब्बी, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। लेकिन एक स्त्री ऐसी थी जिसने वास्तव में विश्वास किया था और उसने अपने हृदय में ये सोचा था, यदि वह यीशु के वस्त्रों को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। इस पर यीशु ने मुड़कर उस भीड़ में से उसको पहचान लिया तथा उसको बताया कि उसकी लहू बहने की बीमारी ठीक हो गई है तथा वो चंगाई पा चुकी है। क्या यह बात सत्य है? लोगों की सभा में से यीशु इसी प्रकार विश्वास की लोगों को पहचान लेता है। अब मेरा दावा है कि वो मृत नहीं है, वरन वो जैसा तब जीवित था वैसा ही आज भी जीवित है। और पवित्र शास्त्र में यीशु बता रहा है कि जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। अब देखिए कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि परमेश्वर यहाँ आत्मिक कलीसिया में किस तरह के दान दे रहा है, क्योंकि इसके प्रत्युत्तर में नीचे अविश्वासियों के मध्य भी अद्भुत कार्य होने अवश्य हैं। पवित्र शास्त्र बताता है कि एक बार यीशु मसीह एक नगर में गए और उनके अविश्वास के कारण वहाँ अधिक काम नहीं दिखा पाए। क्या ये बात सत्य है? आज भी वही बात है। आपको उस पर विश्वास करना अवश्य है, आपका विश्वास करना जरूरी है। और एकमात्र यही बात है कि विश्वास ही के द्वारा आप उसके महान कार्यों को देख सकते हैं। क्या प्रार्थना के लिए बीमारों की पंक्ति तैयार है? अब लगभग 10 मिनट के लिए सभी लोग अत्यंत निष्ठा और आदर भाव भक्ति भाव साध लें। मुझे नहीं पता कि यहाँ खड़े 25-30 बीमार व्यक्तियों तक मैं कैसे पहुँच पाऊंगा, किंतु आप जो यहाँ खड़े हैं इस बात को जानते हैं कि मैं आपके लिए अजनबी हूँ और आपके बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानता। कितने लोग इस बात की पुष्टि करते हैं? अपने हाथ उठाइए। अच्छा, सभी ने हाथ उठाए हैं। अब सभा में से सभी लोग हाथ उठाइए जिनसे मैं पूरी तरह से अपरिचित हूँ। देखिए कि मित्रों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक यही बात है। सभी सेवकगण यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। मसीह ने इसका वादा किया है। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि वह वैसे ही काम फिर से करेगा। अंतिम दिनों में, ठीक प्रभु के आने से पहले ऐसा ही होना था। क्या ये सत्य है? आज के लिए इसी प्रकार की भविष्यवाणी दी गई है। ये लूथर के समय का प्रकाश नहीं है, न ही वेस्ली या पेंटिकोस्टल काल का प्रकाश है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए हम और ऊपर की ओर आ पहुंचे। अब देखिए कि लूथर, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, वरन पेंटिकोस्टल भी अपने अपने समय में ठीक थे। यहाँ पर सभी तरह के लोग बैठे हैं और ये बात व्यक्तिगत नहीं है। क्या होता यदि आप किसी मेथोडिस्ट व्यक्ति को लूथर के समय का वचन नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो पवित्रीकरण का वचन जानता है, जबकि लूथर के समय में ये वचन नहीं था, क्योंकि वो तो न्यायोचित ठहरने तक की बात जानता था। देखा आपने, आप किसी पेंटिकोस्टल व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि पवित्रीकरण ही सब कुछ है, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के फलों को, दान को पुनः स्थापित होते देखा है। वो आपकी बात पर सहमत नहीं होगा, क्योंकि उसने इससे आगे कुछ और पा लिया है। देखिए कि आज की कलीसिया अंतिम चर्च काल है और इसके बाद कोई और कलीसियाई काल नहीं होगा। पवित्र शास्त्र यही बताता है। किंतु इसके बाद लोगों को जमा किया जाना है और हम आज उसी के अंतर्गत बैठे हैं। अब उस अंतिम चिन्ह को याद कीजिए। क्या हम प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के आने की बाट जो रहे हैं? अपने हाथ उठाइए। क्या आप विश्वास करते हैं कि मसीह में पाए जाने के कारण आप इब्राहिम की संतान हैं? अपने हाथ उठाइए। तब इब्राहिम की संतानों, अपना चिन्ह ग्रहण करो। ये चिन्ह वहाँ बाबुल में नहीं दिखाया जाएगा और न ही वहाँ उन नामधारी गिरजों या डिनोमिनेशन में दिया जाएगा, लेकिन ये चिन्ह यहाँ उन लोगों के मध्य दिया जाएगा जो उन गिरजों की भीड़ से बाहर निकल आए हैं। इस बात का विश्वास कीजिए। यहाँ एक महिला है जो मेरी ही उम्र की है और मेरे लिए पूरी तरह से अपरिचित है। मैंने उन्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। यदि ये बीमार हैं तो यदि ये चंगी हो जाए तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ क्षण पूर्व इन्होंने अपना हाथ उठाकर बताया था कि ये मुझसे परिचित नहीं है। आपने देखा होगा ये अजनबी महिला हैं जो यहाँ खड़ी हैं। आज जब लोग यहाँ आए तो इनको प्रार्थना पत्र बांटे गए थे जिनकी संख्याएं क्रमवार नहीं वरन मिली जुली थी। एक नंबर यहाँ है तो 10 नंबर कहीं पीछे है, नंबर 15 इधर है तो नंबर 7 उधर कहीं, इसी प्रकार से है। संख्याएं इसी प्रकार से मिली जुली है और प्रतिदिन इसी तरह से कार्ड लोगों को दिए जाते हैं और लोगों को नंबर पुकार कर बुलाया जाता है तो सभी ओर से लोग आते हैं। देखा आपने, आपको इन प्रार्थना पत्रों की जरूरत भी नहीं है, केवल बैठकर देखें और विश्वास करें। क्यों नहीं ऐसा होगा? आज रात अपनी चेतना में आइए और उस समय को पहचान लीजिए जिसमें आप रह रहे हैं। देखिए मित्रों, समय लगभग पूरा हो चुका है, बीता जा रहा है। अब इब्राहिम के परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया था और यीशु ने वायदा किया है कि वैसे ही इब्राहिम के समय के चिन्ह अंत समय में फिर से प्रकट किए जाएं। उस स्वर्गदूत ने जो कि मनुष्य की देह में परमेश्वर स्वयं था, जो चिन्ह इब्राहिम को दिखाए इससे पहले कि प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र आए, आज भी वही चिन्ह दिखाए जाएंगे। अब हम आज इन नामधारी गिरजों को और अणु परमाणु को और इस भीड़ को देख रहे हैं। हम बिली ग्राहम और ओरल रॉबर्ट को देख रहे हैं जो उनके मध्य में प्रचारक हैं। पेंटिकोस्टल और डिनोमिनेशंस के प्रचारकों को वहाँ चिन्ह दिखाते देख रहे हैं। बिली ग्राहम धर्मशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हैं और लोग उन पर पूर्ण पंडित होने का विश्वास करते हैं। ओरल रॉबर्ट्स पेंटिकोस्टल प्रचारक हैं और लोगों को चंगाई देते हैं। लेकिन इधर देखिए कि इब्राहिम की संतान से कुछ और बात की वाचा दी गई है। वे उधर वहाँ उन नामधारी गिरजों के मध्य हैं, किंतु उन गिरजों से बाहर जमा लोगों के मध्य कुछ और घटित होना है। हम इस बारे में कल रात विस्तार से जानेंगे। देखिए कि मैं उस महिला को नहीं जानता, मैं अपनी पीठ उनकी ओर से फेर लेता हूँ। यदि परमेश्वर मुझे इनके बारे में कुछ बताता है जो उनके व्यक्तिगत जीवन, बीमारी या अर्थव्यवस्था से संबंधित है, हो सकता है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, परंतु ये महिला स्वयं बता देगी कि सत्य है अथवा असत्य। यदि यीशु मसीह वही कार्य आज हमारे मध्य में करे जिनकी प्रतिज्ञा करी गई थी कि अंत के दिनों में उन्हीं कार्यों को करेगा जो उसने यहाँ धरती पर किए थे, तो क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम सदोम किसी हालत में रह रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया आज सदोम किसी दशा में पाई जाती है? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है? अगर ये सच है तो इब्राहिम की संतानों, परमेश्वर पर विश्वास करो। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के मस्तिष्क से ऐसे विचार निकल जाएं कि मैं इस महिला के चेहरे की ओर देखकर उससे टेलीपोथी के माध्यम से या जो कुछ कह रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ जैसा कि लोग सोचते हैं। देखिए कि टेलीपैथी का जानने वाला इतनी नादानी नहीं करेगा। क्या किसी टेलीपैथी ज्ञाता को आपने वचन का प्रचार करते देखा है? क्या आपने किसी तंत्र मंत्र या मृत आत्माओं को सिद्ध करने वाले को वचन सुनाते, चिन्ह दिखाते, अद्भुत कार्य करते या ये स्वीकार करते देखा है कि यीशु मसीह आज, कल और हमेशा एक सा है? कदापि नहीं। देखिए कि केवल लोगों के दिमागों की उपज है। देखिए कि लोग अंधे हैं। क्या विश्वास करते हैं कि लोग अंधे हो सकते हैं? पवित्र शास्त्र बताता है कि वो लोग अंधे होंगे। क्या ये सत्य है? लोग अपस्वार्थी, लोभी, तीनमार, अभिमानी, दोष लगाने वाले, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के लोभी होंगे। वे भक्ति का वेश तो करेंगे परंतु परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे। क्या यीशु ने मत्ती 24:24 में नहीं कहा है कि छूटे मसीह और भविष्यवक्ता अंत समय में उठ खड़े होंगे और ऐसे चिन्ह दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें? लेकिन चुने हुए को भरमाना संभव नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के विचारों में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से हैं और परमेश्वर का ही एक भाग है। अब इब्राहिम, इजाक और याकूब के परमेश्वर, आज रात प्रभु आप ये प्रकट कीजिए कि मैं आपके बारे में सच कह रहा हूँ। अत्यंत नम्रता के साथ निवेदन है प्रभु, ये दास लोगों के अपने विचारों को उनके अंदर से बाहर निकाल सके, ताकि आप हमारी देहों को अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर सकें। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप जानते हैं कि दान किसे कहते हैं? दान वो नहीं है जिसे आप पाएं और फिर विमुख होकर उससे फिर जाएं। दान वो ज्ञान है जिससे अपने को अपने से अलग कर पाते हैं, ताकि परमेश्वर आपका उपयोग अपने लिए कर सके। दान का जो सामर्थ है जिसके द्वारा आप स्वयं को सब बातों से अलग कर पाते हैं, ताकि परमेश्वर आपका उपयोग कर सके। यह महिला जो मेरे पीछे खड़ी है इसी समय तुरंत मरने वाली है अगर उनको चंगाई न दी जाए। यह महिला जो पीछे खड़ी है, इनके लिए किसी ने कुछ समय पूर्व भी प्रार्थना करी थी। ये कैंसर से पीड़ित हैं और कैंसर इनकी छाती और फेफड़ों में है। इनके लिए कुछ ही समय पूर्व प्रार्थना करी गई थी और अब ये परीक्षण कर रही हैं कि उन्हें चंगाई मिल गई है और विश्वास के द्वारा चंगाई मिली है। ये परमेश्वर यूं फरमाता है वाला वचन है। महिला, क्या ये सत्य है? यदि ये सच है तो सभा को हाथ हिलाकर बताइए। इब्राहिम का परमेश्वर आज भी जीवता है। ठीक है, जाइए और उसी तरह विश्वास करती रहिए और आप चंगी हो जाएंगी। आमीन। सभा में मौजूद लोगों, आपका क्या विचार है? क्या आप विश्वास करते हैं? ये महिला जो इधर पंक्ति के सिरे पर बैठी है, सिरे से दूसरी महिला, जूही में घूमा था, सीधी नजर बाजू पर पड़ी और मैंने देखा कि उन्हें उच्च रक्तचाप है। महिला, क्या ये सत्य है? अपना हाथ उठाइए। अगर आप विश्वास करती हैं तो आपका रक्तचाप सामान्य हो जाएगा। इब्राहिम का परमेश्वर आज भी उपस्थित है, जो ठीक वैसे ही जैसा वह था, आज भी परमेश्वर के वचन के रूप में जो आज के दिनों के लिए पहले से ठहराए गए हैं यहाँ है। इस तरफ, क्या अब आप विश्वास करती हैं? अब आप कैसा अनुभव कर रही हैं? परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। युवती, आप तो अभी बच्ची सी हैं। परमेश्वर आपका हृदय जानता है, मैं नहीं जानता। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे आपके कष्ट के बारे में बता सकता है? अगर वो बता दे तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगी? आपकी अपनी समस्या नहीं है, किसी और की है। आपके भाई से संबंधित है, उसकी दशा गंभीर है। तथा वो यहाँ से उत्तर की ओर स्थित एक चुलारे नामक शहर में है। वो एक अस्पताल में है और ल्यूकीमिया से पीड़ित है, और डॉक्टर्स ने निराश होकर उसे मर जाने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उसके बचने की कोई आशा नहीं है। क्या ये सच है? क्या अब आप विश्वास करती हैं? ठीक है, जो वस्त्र तुम्हारे हाथ में है उसे ले जाकर उसके ऊपर डाल दो, और संदेह न करो, विश्वास करो। आमीन। क्या आप विश्वास करती हैं? मैंने इस युवती को जीवन में पहले कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर तो आज भी परमेश्वर है। अब बताइए, क्या कोई मनुष्य इस प्रकार के कार्य कर सकता है? मनुष्यों को ऐसे काम करने के लिए नहीं बनाया गया। आज ये कार्य वही परमेश्वर कर रहा है, जिसका वादा यीशु मसीह ने किया था कि अंतिम दिनों में वो यहाँ होगा और स्वयं को हमारे मध्य में प्रकट करेगा, ठीक वैसे ही जैसे सदोम के दिनों में इब्राहिम की प्रतिज्ञा किए पुत्र के आने से। अब यहाँ मैं इस युवती से परिचित नहीं हूँ, क्योंकि हम जीवन में पहली बार मिल रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूँ? क्या आप विश्वास करती हैं कि ये परमेश्वर का वचन है? और आपको पता है कि ये वचन आज भी विचारों और हृदय की गुप्त बातों को जान लेता है? क्या ये सत्य है? अगर आप विश्वास करें तो चंगाई देने वाला भी है। क्या आपको विश्वास है? आपके ऊपर भी एक काली छाया है जो कि कैंसर है। क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि कैंसर किस भाग में है? ये जैसा कि डॉक्टर कहते हैं, आपकी आंतों के निचले भाग में है। क्या आप विश्वास करती हैं कि आपको चंगाई मिल जाएगी? जाइए और जरा भी संदेह न कीजिए, और परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। आमीन। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, एकदम विश्वास कीजिए कि वो अपने वायदा अनुसार कार्य करेगा। संदेह न करें, वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैं आपको नहीं जानता, और हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। हम अपने हाथ उठाकर सभा को बताएं कि मैंने इस महिला को जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। वहाँ आप जो सभा में बैठे हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि ये सब काम यीशु मसीह कर रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? यह उसके वचन के द्वारा हो रहा है। जब लोग इन बातों को अस्वीकार करते हैं और ग्रहण नहीं करते, तो ये अस्वीकार किसी मनुष्य के प्रति नहीं, वरन उसके वचन के प्रति गिना जाता है। ये वचन ही था जो गिरजों से बाहर कर दिया गया और आज बाहर खड़ा है। ये महिला मेरे लिए अजनबी है और मैंने इन्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। परमेश्वर ही चंगाई देने वाला है। हो सकता है आपकी बात चंगाई से संबंधित ना हो और आपकी कोई अन्य समस्या हो, लेकिन अगर परमेश्वर मुझे उसके बारे में बता दे तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगी? पहली चीज तो यह है कि आपका एक कान खराब है, जिससे आप सुन नहीं पाती, और आप उसके लिए प्रार्थना करवाना चाहती हैं। ये ठीक है, सच है। इसके बाद आपको धूम्रपान करने की बुरी आदत है, जिससे आप छुटकारा पाना चाहती हैं। अपनी उंगली अपने कान में डाल लीजिए। ठीक, ठीक हुए कान में, ठीक है। अब परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने घर जाइए और संदेह मत कीजिए, और विश्वास रखिए तो आप अब से कोई धूम्रपान नहीं करेंगे। जाइए, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने देखा क्या हुआ? क्या ये सच नहीं है? मैं आपको नहीं जानता, हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। अगर परमेश्वर मुझे आपके बारे में कुछ बता दे तो क्या आप विश्वास करेंगी? क्या अब पूरी सभा विश्वास करेगी? क्या कोई इन महिला को जानता है? सभा में कोई इनको जानता है? ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इनके बारे में जो कुछ बताया जाएगा वो सच है कि नहीं, और सच्चाई जाहिर हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ क्षणों में क्या हो गया है। देखिए कि मेरी आवाज थरथरा उठी है और अन्य सभी कुछ चीजों के प्रति मानो मैं अंधा सा हो गया हूँ। देखिए कि हृदयों की गुप्त बातें पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, वरन ये वचन है जो आज के लिए दिया गया था। ऐसा चेलों और प्रेरितों के समय से लेकर पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा वचन में कहा गया था कि मनुष्य के पुत्र के आने के दिन से एकदम पहले ऐसा होगा। जैसा लूत के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। अविश्वासी इसका विश्वास न करेंगे, उनसे ऐसी आशा नहीं है, लेकिन विश्वासी इस पर विश्वास करेंगे। अब अगर पवित्र आत्मा इस महिला के बारे में मुझे बता दे तो कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे? हृदय से पूरी तरह विश्वास करेंगे? अपने हाथ उठाइए। आपके शरीर को कार दुर्घटना के कारण हानि पहुंची है, जिससे आपकी गर्दन के जोड़ों में खिंचाव आया है। आपके गुर्दे में भी चोट लगी है। क्या ये सच नहीं है? आप विश्वास करती हैं? आप ठीक हो जाएंगी, परमेश्वर की प्रशंसा होगी। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर गुर्दे की गड़बड़ी को चंगा कर सकता है? तब जाइए और अपनी चंगाई प्राप्त कीजिए। महिला आप आइए उधर देखिए, क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर हृदय रोग को दूर कर सकता है? ठीक है, अपने मार्ग जाइए और विश्वास रखिए कि आपका हृदय रोग ठीक हो जाएगा। आप आइए, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी पीठ का दर्द ठीक कर सकता है, आपको चंगाई दे सकता है? जाइए, तब विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आपको केवल इतना ही करना है। युवती आप आइए, क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपके पेट के रोग को दूर कर सकता है? जाइए, अपना भोजन कीजिए और पूरे हृदय से विश्वास कीजिए। आप आइए, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जोड़ों की सूजन को चंगा कर सकता है? तब जाइए, विश्वास रखिए और परमेश्वर आपको ठीक कर देगा। ठीक है, आइए, आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, आपको भी जोड़ों की सूजन का रोग है, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है? जाइए, विश्वास रखिए और कहिए प्रभु को धन्यवाद। वहाँ कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास रखते हैं? ये युवती जो यहाँ लाल वस्त्र पहने बैठी है तथा अपना हाथ उठा रही है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? आपको विश्वास है? ठीक है, अपने हाथ अपने बराबर में बैठी युवती के ऊपर रखिए और उनसे कहिए कि उनके गले की खराबी दूर होकर आवाज ठीक हो जाएगी। आमीन, यही बात है। आमीन, क्या आपको विश्वास आया? भरोसा रखिए, यहाँ एक सज्जन बैठे हैं जिन्हें रक्तस्राव का रोग है, क्या आप वहीं बैठे बैठे विश्वास कर रहे हैं श्रीमान? हाँ, आपको रक्तस्राव है, क्या आपको विश्वास है कि आप चंगे हो जाएंगे? वही युक्ति जो आपके बराबर में बैठी हैं, उन्हें भी रक्तस्राव है और पीठ में भी रोग है, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है? क्या विश्वास रखती हैं? अपना हाथ उठाइए और चंगाई ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए। ये महिला जो आपके बराबर में बैठी हैं, उनकी टांगों और कूल्हे में कष्ट है, क्या आपको विश्वास है ये बात सच है? क्या आप विश्वास करती हैं कि चंगी हो जाएंगी? ठीक है, अपना हाथ उठाकर कहिए कि मैं चंगाई को ग्रहण करती हूँ। इनके बराबर में बैठी युवती को संक्रामक रोग है। युवती आप जो चश्मे पहने बैठी हैं, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर इस संक्रमण रोग को ठीक कर देगा? अपना हाथ उठाइए और कहिए कि मैं चंगाई ग्रहण करती हूँ। ठीक है, विश्वास कीजिए। आपके बराबर में बैठी युवती के गुर्दे खराब है, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर गुर्दों को चंगा कर सकता है? ठीक है, हाथ उठाइए, चंगाई ग्रहण कीजिए। इनके बराबर में बैठी छोटी लड़की को ग्रंथि यानी गिल्टी निकल आई है, क्या तुम्हें विश्वास है परमेश्वर उसको वहीं ठीक कर देगा? हाथ उठाइए और चंगाई प्राप्त कीजिए। कितने लोग पूरे हृदय से विश्वास कर रहे हैं? तब खड़े हो जाइए और अपनी चंगाई ग्रहण कीजिए। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाइए, विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा इस भवन में चारों तरफ उदेला जाए और उसकी दिव्य उपस्थिति में सब लोग चंगाई पा जाएं।